नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
संजय धृतराष्ट्र का दूत बनकर गया उपप्लव्य नामक स्थान पर, जो विराट की जगहों में एक स्थान था। वहां खूब सेना इकट्ठी हो रही थी, सेना तो दोनों तरफ इकट्ठी हो रही थी। संजय ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप अपने प्रधान प्रधान सेनापतियों के राजाओं के बीच में बैठकर बात कर लो, तो सबकी राय एक साथ जान लेंगे। तो कहा, हम पांचों भाई बैठे ही हैं, द्रुपद वगैरह है ही, भगवान कृष्ण भी हैं, इनके सामने बात कह दो, मुख्य मुख्य बैठे हैं हम लोग। संजय की बात का पूरा आशय यही था कि आपको यदि दुर्योधन राज्य नहीं भी देता है तो नहीं सही, आप भिक्षा मांग के निर्वाह कर लेना, लड़ाई मत करो। खास बात ये थी। फिर वहां बहुत विचार विमर्श हुआ और अंत में युधिष्ठिर ने अपनी बात कही और फिर भगवान ने अपनी बात कही। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि चोर डाकुओं में और दुर्योधन में कोई अंतर नहीं है, डाकुओं के हाथ में हम धर्म का राज्य दे देंगे क्या? बहुत कड़वे बोले। द्रौपदी का वो दृश्य भी भगवान ने अपने वचनों में उपस्थित किया। फिर युधिष्ठिर ने भी समझा दिया और यहां तक कह दिया, पांच गांव तक हम राजी हैं। वैशंपायन जी अब आगे बोलते हैं कि उसके बाद युधिष्ठिर की आज्ञा से संजय वहां से चले गए। संजय के हस्तिनापुर में पहुंचने पर शीघ्र वे महल की ओर गए और द्वारपाल से बोले कि प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक बात करनी है। कौन बोला? संजय। द्वारपाल ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज प्रणाम, संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए हुए खड़े हैं और वे अत्यंत आवश्यक बात करना चाहते हैं। पांडवों के पास से उनका अभी आना ही हुआ है, कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय आ गए, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ, मुझे तो कभी भी उनसे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर दरवाजे पर क्यों खड़ा कर दिया। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहा, महाराज मैं संजय आपको प्रणाम करता हूं, पांडवों से मिलकर यहां आया हूं, पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और आपका कुशलक्षेम पूछा है, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का भी कुशलक्षेम पूछा है, आप अपने पुत्र नाती मित्र मंत्री और आश्रितों के साथ आनंद पूर्वक है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, धर्मराज अपने मंत्री पुत्र और भाइयों के साथ भी तो कुशल पूर्वक होंगे ना। संजय बोले, महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न थे, मैंने सोचा था वनवास के क्लेशों को सहने के कारण युधिष्ठिर कुछ उदास कुछ खिन्न और कुछ शरीर से भी दुर्बल मालूम देंगे, परंतु मैंने उन पांचों भाइयों को देखा है, ये पहले से ज्यादा प्रसन्न है, शरीर में भी बड़ा अलौकिक बल है, बड़ा तेज है और वे बड़े आनंदपूर्वक हैं। बस वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं, परंतु राज्य भाग को अधर्म से नहीं लेना चाहते। विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी विद्वान और शीलवान वे पांडव धर्म की रक्षा के अंतर्गत अपना राज्य चाहते हैं। हे महाराज, जरा अपने कर्मों की ओर दृष्टि डालो। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उससे बिल्कुल आपका बर्ताव विपरीत होता चला जा रहा है। इसके कारण इस लोक में तो आपकी खूब निंदा हो चुकी है, यह पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा। यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी, कुल में उत्पन्न क्रूर, दीर्घ काल तक बैर रखने वाले, क्षत्र विद्या में अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियों पर आपत्तियां टूटती रहती हैं। जो सदाचारी कुल में उत्पन्न होते हैं, बलवान हैं, जितेंद्री हैं, यशस्वी हैं, विद्वान हैं, वह प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करता ही है। तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यही कौरवों के सर्वनाश का कारण बनेगा। यदि अपने पाप के कारण कौरवों का असमय में ही विनाश होने वाला होगा, तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिर पर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में क्या ढूंढते हो? इस जगत में क्या मिलेगा? कभी प्रिय, कभी अप्रिय, कभी सुख, कभी दुख, कभी निंदा, कभी प्रशंसा, इसके अलावा आपको इस जगत में मिलना क्या है? निंदा उसी की होती जो अपराध करता है, प्रशंसा उसी की होती जिसका व्यवहार उत्तम होता है। भरत वंश में विरोध फैलाने के कारण मैं तुम्हारी ही निंदा करता हूं। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। सारे संसार में पुत्र को इतना अधीन होते हुए केवल तुमको ही देखा है। ऐसा मैंने कोई बाप नहीं देखा। तुमने ऐसे ही लोगों का संग्रह किया है जो कभी विश्वास के योग्य नहीं है, और जो अपने विश्वास के योग्य है उनको तुम दूर फेंकते हो। इस दुर्बलता के कारण तुम इस पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। धृतराष्ट्र, मेरे कटु वचनों को याद रखो। इस समय रथ के वेग से बहुत हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूं। यदि आज्ञा दो तो बिछने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल सभा में सब कुरुवंशी इकट्ठे होंगे, उस समय मैं अजात शत्रु का पूरा बयान सुनाऊंगा और साथ में यह भी कहूंगा कि कृष्ण ने किस मुद्रा में, किस स्थिति में और क्या क्या हमको प्रताड़ित करते हुए हित के वचन कहे हैं। अभी मैं थका हुआ हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र जाओ, आज्ञा देता हूं, शयन करो। सवेरे सभा में तुम्हारे कहे वे युधिष्ठिर के संदेश को सभी कौरव लोग सुनेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र अपने अंदर ही अंदर बहुत टूट गए, घबरा गए। संजय की बातों से वे भयभीत हो गए। एक तरफ पुत्र का स्नेह है, दूसरी तरफ पांडवों का न्यायपूर्वक राज्य है। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र क्या करें? न उनको बैठने से चैन है, न उनको सोने से चैन है। वे एक विचित्र स्थिति में फंसे हुए हैं। उन्होंने द्वारपाल को बुलाया, द्वारपाल से कहा, द्वारपाल मैं जल्दी से जल्दी विदुर जी से मिलना चाहता हूं। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर जी से बोला, महामंत्री, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास आकर बोले, द्वारपाल धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज आपकी आज्ञा से विदुर जी यहां आ चुके हैं, वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी नीतिज्ञ विदुर को यहां शीघ्र ले आओ, मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल विदुर के पास गया और बड़े विनय से बोला, विदुर जी आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। तत्पश्चात विदुर जी धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर विचार में पड़े हुए राजा से बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ मैं विदुर हूं, आपकी आज्ञा से आया हूं, यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने लंबी सांस लेते हुए घबराहट और भय के साथ कहा, विदुर संजय आया था, मुझे भला बुरा कहकर चला गया। कल सभा में वो अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। अजात शत्रु युधिष्ठिर के साथ कृष्ण के भी दृढ़ संदेश सुनाएगा, दृढ़ संदेश। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात जान नहीं सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा भी रखा है। हे विदुर, मैं चिंता में जलता हुआ अभी तक जग रहा हूं। इस घोर रात्रि में सब विश्राम कर रहे हैं, मुझे विश्राम के लिए समय था, लेकिन चित्त में ऐसी चिंता की आग लग गई है, मैंने तुम्हें भी विश्राम नहीं करने दिया। विदुर मेरे लिए कोई कल्याण की बात सोचो, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में बड़े निपुण हो। संजय जब से पांडवों के यहां से लौट कर आया है, उसकी भाषा, उसका व्यवहार और उसकी ध्वनि में बड़ा अंतर है। पहले उसने मुझमें इतना कभी दोष नहीं देखा था, आज वो मुझे बहुत डांटते हुए कहा है। पांडवों का राज्य उनको न मिलने पर क्या दुष्परिणाम होगा, कौरव वंश का नाश हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि भयावह शब्दों के द्वारा मेरे मन को अशांत कर दिया। कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र। किसको बोल रहा है? विदुर जी को। मेरी सारी इंद्रियां विकल हो रही है, मैं घबरा रहा हूं, विदुर वो कल क्या कहेगा, युधिष्ठिर क्या कहेगा, कृष्ण ने क्या कहा है। इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है, इसीलिए तुमको बुलाया है। विदुर जी बोले, महाराज जिसका बलवान के साथ विरोध होता है उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का एक रोग लगा ही रहता है। किन किन को? एक तो जिसने बलवान से विरोध कर रखा है, एक जो साधनहीन और दुर्बल मनुष्य होता है उसको, एक जिसका सब कुछ हर लिया गया है उसको, एक कामी को और एक चोर को रात को जागने का रोग लगा ही रहता है। हे नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराए धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? ये आप ही के दिल से पूछो, इसका सही उत्तर तो आपका हृदय बोलेगा। बताओ महाराज, इन पांच चीजों में से आपकी क्या दोष है? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम मुझसे कुछ मत पूछो, मैं अपने जले कटे और चिंता में डूबे हृदय से क्या तुमको बता पाऊंगा। मैं तो तुम्हारे ही धर्मयुक्त वचन सुनना चाहता हूं, क्योंकि इस राजर्षि वंश में तुम ही एक ऐसे विद्वान और माननीय पुरुष हो जो एक सत्य और स्पष्ट बात को कहने में संकोच नहीं करते हो। तुम ही कहो, मुझसे मत पूछो। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, अब भाई थोड़ी ज्ञान की बातें चलेगी, उकताना नहीं, ये विदुर नीति है। सेठ जी ने बहुत सी बातों का संक्षिप्तीकरण किया है, संक्षेप में कहा है, लेकिन ज्ञान की, नीति की और गीता की, इनकी बातों को विस्तार से लिखा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं, वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। ये आज्ञाकारी होने का ये लक्षण होता है? आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान नहीं सके और उनके विपरीत आप आचरण करने लग गए, और अब उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हो रही है। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव है, दया है, धर्म है, सत्य है, पराक्रम है, वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं, और इधर आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर ऐश्वर्य बुद्धि में आराम लेना चाहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहन करने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित होता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण कहलाते हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता, अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचारों को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित होता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वो पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और भोगों को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्णन करता है वो पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से परमार्थ में प्रवृत्त होना, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरों के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता, वो पंडित होता है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते और विपत्ति में पड़कर है जो पहले निश्चय करके फिर